ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಿಠಲ ಭಗವಾನ್ ಖೀ, ಶ್ರೀ ಪಂಡರ್ಪುರ ಧಾಮ್ ಖೀ, ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಪಂಡ್ರಿನಾಥ್ ಭಗವಾನ್ ಖೀ, ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಜೀ ಖೀ, ತಾಯಿ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೋ ತೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಧಾಮೋ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಏಕ್ ಹೈ ಕಂಚನ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕೌನ್ ಸಾ ಹೈ ವೋ ಕಂಚನ್, ಮತಲಬ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಮತಲಬ್ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮತಲಬ್ ಸಂಪತ್ತಿ. ತಿರುಪತಿ, ತಿರುಪತಿ ಕೋ ಕಂಚನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಫಿರ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸಬ್ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ, ತುರಂತ ತುರಂತ ಬೋಲಾ ಸಬ್. वहाँ पर भगवान 56 भोग लेते हैं, क्या कहें आपको. ऐसा वरदान उन्होंने दिया है राजा इंद्रदुम्न को कि एक एक भोग लिया और हाथ धोया तो वो हाथ सूखने के पहले दूसरा भोग शुरू करना चाहिए कंटिन्यूअस. तो जगन्नाथ जी का जो हाथ है ना, वो कभी सूखते ही नहीं है, कॉन्स्टेंट वो प्रसाद या पानी, प्रसाद या पानी, इससे ही गीले रहते हैं. और तीसरा है नाद ब्रह्म, वो क्या है अभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपने आपको क्यों टोका बालकनी में लोगों को. हाँ, क्योंकि ये नाद ब्रह्म है. जब से आया हूँ, जब से आता हूँ, जितने साल से, कितना भी जल्दी आ जाओ, आपको लगेगा एकादशी के दिन बहुत कीर्तन होता होगा. 10 दिन पहले आ जाओ, फिर भी आपको 24/7 यहाँ पर कीर्तन ही मिलेगा. हाँ, डिबी डिबी डिपांग 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 डिबी डिबी डिपांग 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 चलते रहता है कॉन्स्टेंट. और एक नहीं, चार चार कीर्तन का लाउड स्पीकर एक साथ चलता है, तो चार चार कथाएँ, चार चार कीर्तन एक साथ में चलते हैं. और आप 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, रात को 12:30 बजे सो जाओ, आपको अखंड कीर्तन मिलेगा, क्योंकि नाद ब्रह्म इसका नाम है. स्वर, हाँ, ऐसे ऐसे ही नहीं दिया उसका नाम नाद ब्रह्म. तो हमें कैसा आना चाहिए यहाँ पर, हमें भी नाद ब्रह्म में रहना चाहिए. या तो निरंतर जप करना चाहिए, या तो कीर्तन करना चाहिए. अगर कीर्तन हो रहा है तो बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना है, आपका असफल है यहाँ पर आना. अगर आप कीर्तन में आके ऐसा इधर उधर देखेंगे और कहीं और गुम हो जाएंगे. अधिकतर कहाँ गुम होते हैं हम लोग आजकल? हाँ, सबको पता है यार, सबको नॉलेज है, पण कसं आहे, कळत पण कळत आहे पण वळत नाही, है ना. सबको पता है कि हमारा ध्यान जो भगवान का जिस पर अधिकार है उसे कौन छीनता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम दिल से उसको छीनने देते हैं. ले लो, आपका ही है. जिस दिन हम सब लोगों ने ये व्रत ले लिया कि हम जप करते समय मोबाइल को नहीं देखेंगे, उस दिन से आपका जीवन धन्य हो जाएगा. अब ये सब क्यों बता रहा हूँ, बहुत जल्द चतुर्मास आरंभ हो रहा है और चतुर्मास में ऐसे कहते हैं कुछ ना कुछ व्रत लेना चाहिए. मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा व्रत कलयुग में आजकल है ही नहीं कोई. मोबाइल को छोड़ के बंद रख के जप करना, ये आप सब लोग प्रण कर लो पंडरपुर के धाम में कि आज से ही, अभी वो एकादशी और पूर्णिमा का इंतजार मत करो, प्रतीक्षा मत करो, तुरंत शुभस्य शीघ्रम, है ना. अच्छा काम जो है ना, वो कल परसों मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती, अच्छा काम तो अच्छा ही काम होता है, तुरंत होना चाहिए. ये हमारे जीवन की कसौटी है. आपको वन में जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, धन संपत्ति त्याग करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मोबाइल छोड़ दो और भगवान का नाम का जप करो, भगवान भी आपको बड़ा आशीर्वाद देंगे। कितना बड़ा प्रलोभन आपने छोड़कर मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, तो सुने कितना अच्छा लगेगा कि मेरे नाम के जप के लिए इन्होंने मोबाइल का मोह छोड़ दिया है। मोबाइल का मोह आपके देश में होता है ना, मोमो याद रखो, मोमो मोबाइल का मोह छोड़ दो। हरे कृष्णा। इसलिए बार बार इस विषय पर चिमटे निकालना मेरा काम है और वो मैं करते रहूंगा। दूसरी बात कि धाम कहाँ प्रकट होता है, हम लोगों से बहुत लोगों को भी दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा सर, क्योंकि तो इतनी भीड़ है, इतना लाइन है, सेवा भी है, तो हो सकता है दर्शन नहीं मिलेगा, तो क्या विट्ठल जी नहीं मिलेंगे, क्या लगता है आपको, दर्शन नहीं मिलेगा तो विट्ठल नहीं मिलेंगे? नहीं, विट्ठल जी उनके नाम में भी है, विट्ठल जी उनके भक्तों की सेवा में बैठे हुए हैं, विट्ठल जी कथा में प्रकट होते हैं। हाँ, सबसे अधिक भगवान प्रकट कहाँ होते हैं, कथा के माध्यम से प्रकट होते हैं, जब धाम की महिमा प्रकट होती है उसमें से भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे घूमने को जाएंगे बिना कुछ पता किए हुए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे क्यों खड़े हैं, कोई कह रहे हैं इनकी स्थापना नहीं की है, कोई कह रहे हैं प्रतिष्ठापित है, कोई कहे ऐसा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले है श्रवण, उसके बाद में दर्शन, और अधिकतर संत लोग बताते हैं कि श्रवण के माध्यम से ही दर्शन होता है। संत लोग कहते हैं कि कानों से ही देखना है हमको, जब सुनेंगे तो समझेंगे, तो जो देखेंगे वो समझ में आएगा, तो जो देख रहे हो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं जानता हूँ कि आप लोग दिन भर सेवा करेंगे, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, हो सकता है कथा में नींद आ सकती है। खास करके नींद किसको आती है बताओ, उनको टेकने के लिए मौका मिला है, जो टेकेंगे वो सोएंगे निश्चित रूप से। इंदिरा देवी वो अनुकूल स्थिति को देखती है, वहीं जाकर अटैक करती है, इसलिए मेरे पीछे टिकने की व्यवस्था है क्या, इतना दूर है देखो, मैं सो जाऊंगा तो भी टिक नहीं पाऊंगा उधर, कारण क्या है, मैं भी जगा रहा हूं, है ना। हरे कृष्णा। तो और एक पंडरपुर का ट्रिप आपके लिए काफी है भगवत धाम जाने के लिए, एक बार, लेकिन एस्ट्रिक्स कंडीशन अप्लाई है ना, वो सब कुछ लॉलीपॉप नहीं होता है, आसान के पीछे भी रहता है, एक स्टार रहता है उसके ऊपर, नीचे छोटे अक्षर में लिखा रहता है ये 1 2 3 4 5 करेंगे तो वो क्या है, वो बिंदु जो है स्टार, वो ये है कि यहाँ पर आकर एकाग्र चित्त से जिस काम के लिए आए हैं वो काम करना है, और मन को भटकाना नहीं है, यहाँ वहाँ देखना नहीं है। आप लोग यहाँ पर किसके लिए आए बताओ, क्या समझ में आपको आए, किसकी सेवा करने आए, वारकरियों की सेवा करने आए, सिंपल एंड एकदम सिंपल आपका पर्पज उद्देश्य ये है, चाहे जो प्रसाद बनाने के लिए आया हो, चाहे मैरिज देखने के लिए आया हो, चाहे इमरजेंसी वार्ड में काम करता हो, चाहे कीर्तन पार्टी में हो, चाहे हरिनाम संकीर्तन पार्टी में हो, जो भी है वो अल्टीमेटली उसका निचोड़ क्या है, वारकरी सेवा। और वारकर सेवा हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो विट्ठल जी को बड़े बड़ा प्रसन्न कर देती हैं। तो चैलेंज यही है, जितना भी दिन आप रहेंगे, 3 4 दिन 5 दिन जहाँ पर जितने भी रहेंगे, आपका मन कॉन्स्टेंटली वारकरी सेवा में टिका हुआ है कि और कहीं भटक रहा है, यही आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो जिनको पंडरपुर की वारी सफल करनी है, कोई ऐसा है इसको यहाँ पर आना भी है और सफल भी करना नहीं है, ऐसा कोई है, इतना तो मूर्ख कोई हो नहीं सकता है कि यहाँ पर आना है लेकिन यहाँ की वारी उसको असफल करनी है, ऐसा नहीं हो सकता है, सबको अपनी वारी सफल करनी है, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, या और कोई काम करते हो, क्योंकि सब लोग आत्मा है, भगवान का अंश है, सब लोगों को धाम में आकर अपना यात्रा सफल करना है। इसके लिए नंबर 1 है सेवा में एकाग्रता, किधर भी इधर उधर टाइम पास नहीं करना है, सेवा एक सेवा दुनी सेवा, वही करना है। वक्त जो है वो समय जो है उसको बेकार में व्यर्थ नहीं करना है। अगर सेवा आपकी समाप्ति भी हो गई, आपका ड्यूटी समाप्त हो गया है, आप अभी वापस जाकर स्नान वान करके फ्रेश हो गए, तो भगवान नाम का जप करो, यहाँ आकर बैठो और कीर्तन में साथ दो। बिना बताए यहाँ वहाँ भटको मत, आपका लीडर को पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, किधर हो, क्योंकि सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है ना, कहीं गुम हो गया इधर तो जिम्मेदारी है इसकी। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम जो है ना, यहाँ पर अपना व्यवहार जो है ना वो बहुत उच्च होना चाहिए, क्योंकि सब लोग आपको देख रहे हैं, पुलिस लोग देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी आपको देख रहे हैं, यहाँ के आने जाने वाले वर्कर ही आपको देख रहे हैं, मरीज के रूप में आके आपको देख रहे हैं, सब आपको देख रहे हैं, और उनको लगता है कि आप भक्त हो, इस भाव से आते हो। तो हमें भी कैसा है, भक्त जैसा व्यवहार करना चाहिए ना। अगर वो हमको देख रहे हैं तो हम न चाहते हो भी हमारे पर एक जिम्मेदारी होती है। अगर आपने पुलिस का ड्रेस पहना हुआ है और रोड पे खड़े हैं तो आपको एक जिम्मेदारी होती है कि भाई पुलिस होने के नाते आप वो चोरों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, चोर नहीं बन सकते पुलिस होने के बाद। चोर होंगे तो भी पुलिस वर्दी में थोड़ा सा आपको संभालना पड़ता है। तो पुलिस का उपमा मैंने दिया, लेकिन आप लोग तो भक्त हो, सब लोग, कोई भक्त का नाटक करने के लिए यहाँ पर नहीं आए, सब लोग भक्त हैं, तो आपको भक्त जैसा व्यवहार करना चाहिए। और खास आपको देखना है कि स्त्री और पुरुष इसके बीच में जो व्यवहार है वो बहुत पवित्र और शुद्ध होना चाहिए, किसी भी प्रकार का यहाँ पर उसमें गलत उद्देश्य गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन का आत्मा है। स्त्री और पुरुषों का एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है कैसे करते हैं, उसके ऊपर हमारे संप्रदाय, हमारा मंदिर, हमारी संगठना, ये सबका जो उत्तरदायित्व है ना, जो भी हमारे उत्तरदायित्व है उसमें है। किसी भी मंदिर में आप जाएंगे ना, या चर्च में जाइए, इधर भी जाइए, आप किसी भी धार्मिक संस्था में जाइए, प्रवचन में जाइए, या कथा सप्ताह में जाइए, कहीं भी सभा में जाइए, और जब बाहर का व्यक्ति नया आता है ना, उसके अंदर एक नया, हम लोग मंदिर में कैसे करते हैं, आज के कार्यक्रम में कोई पहली बार आया हो तो उसको खड़ा करते हैं, उसका सत्कार करते हैं ना, तो वो जो नया व्यक्ति आता है, एक पहली बार आता है, वो सबसे पहले क्या देखता है कि ये भक्तों के समुदाय में, ये संप्रदाय में, ये भक्तों की संगठना में स्त्री पुरुष कैसा व्यवहार करते हैं, सबसे पहला देखते हैं। भोजन कैसे करते हैं, खाके उठते बैठते टेबल में बैठते, वो नहीं देखते, सबसे पहले देखते हैं कि स्त्री और पुरुषों का व्यवहार इसमें कैसा है, उसके ऊपर वो उस संप्रदाय का, उस संगठना, उस मंदिर की जो क्या कहते हैं उसकी वैल्यू, मूल्य उसका मापते हैं वो। हमारा मूल्य मापन जो है वो हमारे संस्था में स्त्री और पुरुष कैसे व्यवहार करते हैं उस पर किया जाता है। और प्रभुपाद जी ने तो बड़ा सुंदर आदर्श हमको दिया है, श्रेष्ठ आदर्श हमको दिया है कैसे व्यवहार करना है। आपको इस सारे दिनों में ये ध्यान में रखना है कि मेरा व्यवहार ऐसे होना चाहिए कि उसको देखकर दूसरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। और कोई भी क्या कहते हैं उसको, अल्टीरियर मोटिवेशन, हाँ महेश कुचरेकर, टेका तो गया, हाँ सो क्या कह रहा था मैं, हाँ अगर आपका यहाँ पर आने में कोई अल्टीरियर मोटिवेशन है, वर्करियों की सेवा के अलावा कुछ मन में मोटिवेशन है, तो भी आपकी यात्रा फेल है। और वर्करियों की सेवा ही प्रधान आपका कार्य होगा तो बाकी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, प्रसाद अच्छा मिलेगा, कीर्तन अच्छा मिलेगा, जो भी सब कुछ अच्छा मिलेगा, रहने की व्यवस्था में भी आपको आनंद आएगा, क्योंकि घर की सुविधा तो यहाँ नहीं मिलेगी ना, घर का बाथरूम, घर का एयर कंडीशन, घर का बेड, सब कुछ यहाँ पर ही मिलेगा। और वो सेवा करने आए हैं वॉलंटरीली, स्वयं स्फूर्त तरीके से हम कुछ तप को स्वीकार करने आए हैं, कुछ असुविधा को एक्सेप्ट करने आए हैं, तो वो भी हमको करना चाहिए, क्योंकि असुविधा को स्वेच्छा से स्वीकार किए बिना, वो भी भगवान के लिए, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। तप की व्याख्या क्या है, तप की व्याख्या बहुत सिंपल है, स्वेच्छा से भगवान के लिए स्वीकार की हुई असुविधा है ना, तो वो हम सबको यहाँ पर फिट करना है कि हम लोग यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का खुद का बंगला नहीं है ये कि वो अपना यजमान के रूप में आपका स्वागत कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पर दूर से आए हैं। डॉक्टर चौधरी हमारे प्रमुख है, वो भी बाहर से आए, उनका कोई घर बंगला यहाँ पर नहीं है, वो बेचारे दिन रात डॉक्टर श्रीविद्या वो सब लोग मिलकर व्यवस्था करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि आप लोगों को आराम मिले, अच्छी तरह से आप रहे, प्रसाद मिले आपको, कोई असुविधा ना हो। फिर भी असुविधा होती है क्योंकि ये धाम में आए ना आप, घर से दूर आए, तो मन में ठान लो कि हम लोग यहाँ पर कंफर्टेबल होने के लिए नहीं आए हैं। आपको दी हुई स्थिति में कंफर्टेबल होना है स्वेच्छा से, और ऊपर से क्या बोलना है एंड में, थैंक यू विट्ठल भगवान, बहुत धन्यवाद। क्यों धन्यवाद देना है? असुविधा दिया, रहने का व्यवस्था ठीक नहीं था, और जो भी है सब कुछ फिट नहीं हुआ, आपने हमें धाम में आने को दिया, आपके घर में, धाम यानी उनका घर है वो, कौन भगवान के घर में घुसने की हिम्मत कर सकता है बताओ? आप में से कितने लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के घर में जा सकते हो, बोलो? इच्छा तो सबको होगी, कौन जा सकता है? उनकी मर्जी होगी, आपको आमंत्रण होगा तो आप जा सकते हो। और ये भगवान जो सारे सृष्टि के मालिक है, उसके घर में हम दिन दहाड़े घुस रहे हैं और फिर कंप्लेंट भी कर रहे हैं, क्या पानी नहीं है, गर्म नहीं है, ठंडा नहीं है, क्या बटाटा वड़ा एक ही मिला, चार चाहिए थे। तो ये ऋणी भाव यहाँ पर मन में बसाना है। आपकी यात्रा तब सफल होगी जब जाते समय आपको लगेगा अरे समाप्त हो गया सेवा, धन्यवाद है भगवान आपका, आपने हमको आपके धाम में इतने सारे करोड़ों क्षण रहने दिया, यहाँ की हवा को लेने दिया, यहाँ के जल को पान करने दिया, यहाँ का प्रसाद ग्रहण करने दिया, यहाँ के वारकरियों की सेवा करने का मौका दिया, निवास दिया, धाम वास, ये सब कल्टीवेशन की बातें हैं, अपने आप नहीं होता है। कुत्ता बिल्ली आता है तो उसके मन में ये विचार नहीं आते हैं, मनुष्य के मन में ही आ सकते हैं। कुत्ता बिल्ली तो बहुत है, सुअर भी है यहाँ पर, सब प्रकार के जानवर हैं, लेकिन धामवास आप ही कर सकते हो, उनका भी धामवास हो रहा है, लेकिन सार्थक तरीके से धामवास केवल मनुष्य आप लोग कर सकते हो, और वो आपको करना चाहिए। नहीं तो बम्बई में तो रहते ही अपने घर में कंफर्टेबल है ना। ये सब धाम के वास की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और वो सफल करना है तो जप करना बहुत आवश्यक है। तुझे रूप चित्ती राहो मुखी तुझे नाम, ये धाम वास का रहस्य है। पांडुरंग का प्रत्यक्ष दर्शन हो ना हो उनकी इच्छा है, देंगे, लेकिन मन में तो उसका चिंतन कर सकते ना, इधर तो बैठे ना, इधर दर्शन दे रहे। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो प्रतिमा फोटोग्राफ नहीं है, वो साक्षात है भगवान। आप देखेंगे तो आपको लगेगा फोटो है तो फोटो है, आपको लगेगा विट्ठल साक्षात उपस्थित हैं, तो वहाँ पर है वो, पूरी शक्ति, पूरे ऐश्वर्य, पूरे व्यक्तित्व के साथ, पूरी शक्तियों के साथ उपस्थित है। तुझे रूप चित्ती रहो मुखी तुझे नाम, और हाथ पैर क्या करेंगे, सेवा करेंगे, तो आपकी पंडरपुर की वारी सफल है। ऐसी एक वारी करेंगे ना तो एक वारी का भी रिकॉर्ड अगर जमा हो जाएगा ऊपर, तो वो एक वारी भी आपको उनके धाम में ले जाने के लिए पर्याप्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डायलॉगबाजी नहीं कर रहा हूँ, कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, वो हृदय की अनुभूति है और ये हकीकत है। अनंत संतों ने भी यही कहा है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता है। आपको क्या लगता है टिकट निकाला, आपने रूम बुक किया, उनके कैंप में नाम दे दिया तो आप आ गए? नहीं, विट्ठल बुलाते हैं ना तो ही आता है यहाँ पर कोई। बाकी लोगों को आइन मौके पे लूज मोशन होता है, किसी का पैर टूटता है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, लैंड का इश्यू हो जाता है, कोई घर का कोई पता नहीं क्या क्या हो जाता है, आइन मौके पे टिकट है कैंसिल हो जाता है। वृंदावन बरसाने की भी यही कहानी है, वहीं पहुंचता है जो राधा रानी उसको बुलाती है, बाकी सब लोग तो ऐसे ही सोचते रहते हैं जाऊंगा जाऊंगा। तो आप लोग यहाँ आ गए, इसका अर्थ क्या हुआ? विट्ठल जी ने आपको सैंक्शन कर दिया, आ जाओ मेरे धाम में रहो, मेरे भक्तों की सेवा करो। ये जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है, बाकी धन दौलत परिवार डिग्री ज्ञान वान सब तो कर्मों के अनुसार चलते रहता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। यही जीवन की प्राप्ति, इसी के लिए हमने मनुष्य का जन्म लिया है, इसी के लिए मनुष्य जन्म को दिया गया है, ताकि हम भगवान के शरण में रहे, भगवान के भक्तों की सेवा में रहे। सबसे सुरक्षित स्थान है वो, कोई माया आपको छूने सकती है, अगर आप इस चेतना में भगवत सेवा में हो तो माया आपको छूने, माया को शक्ति नहीं आपको छूनेगी। जहान कृष्ण तहान नाई माया अधिकार, माया का अधिकार कहाँ होता है? जहाँ कृष्ण नहीं होते, जहाँ विट्ठल की स्मृति नहीं होती है, वहाँ पर माया का पूरा 100% शत प्रतिशत अधिकार होता है। लेकिन जहाँ विट्ठल की स्मृति है जहाँ पर मुख में उनका नाम है, जहाँ उनकी हमारे अंग इंद्रिय उनकी सेवा कर रहे हैं, माया का कोई शक्ति नहीं है। इतनी बलशाली है, दैवीयशी गुणमयी मम माया दुरात्यया, भगवान स्वयं बोल रहे हैं किसी को लांगने की शक्ति नहीं मेरी माया के ऊपर, लेकिन जो मेरी शरण में है माया उसको छू नहीं सकती है। तो यहाँ का निवास जो है वो माया के आवरण में नहीं करना है, यहाँ का निवास माया से मुक्त होकर करना है। सदैव भगवान नाम, भगवत सेवा, भगवत दर्शन चित्त में करते हुए करना है। और अभी मैं आपको वो कथा बताऊंगा जो इस धाम की क्या कहते हैं उसको सबसे प्रमुख कथा है, सेंट्रल स्टोरी, केंद्र स्थानीय स्टोरी, वो पुंडलिक की कथा। वो हमको बता देती है कि धाम में क्या मूड होना चाहिए। ये तो आप लोग को मैंने बाह्य नियम बताए कि कैसे व्यवहार करना है, कैसे वस्त्र पहनना है, कैसे खाना है पीना है, कैसे सेवा करना है, टाइम पास नहीं करना है, मन को भटकाना नहीं, ये सब फिर भी बाह्य है। अहो बाह्य, अंदर की बात क्या है, इस धाम के भाव को आप पकड़ेंगे ना तो वो आपकी यात्रा सफल कर देता है। हर एक धाम का एक भाव होता है, यहाँ तक कि वृंदावन धाम में भी बहुत सारे अलग अलग विभाग है, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, काम्यमन, बहुत सारे अलग अलग है। वो अलग अलग वन का भी अलग अलग भाव है, किसी वन में बाल्य लीला है, किसी वन में श्रृंगार लीला है, किसी वन में वात्सल्य लीला है, किसी में वात्सल्य और बाल लीला का कॉम्बिनेशन है, किसी में और कुछ कॉम्बिनेशन है। राधा रानी के धाम में एक अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन अपना अपना एक साई भाव है, और संतों की कृपा से वो हमको पता चलता है कि ये इस धाम का साई भाव है, और वो हमको पकड़ना चाहिए उनकी कृपा से। तो इस धाम का साई भाव क्या है, इस धाम का साई भाव जो मुझे समझ में आया वो सेवा है, बस ओनली सर्विस। वो यहाँ की सेवा इतनी पावरफुल है कि अगर आप करेंगे निरपेक्ष होकर तो भगवान दौड़ के आएंगे आपको देखने के लिए। ये इस धाम की महिमा है, ये धाम की स्थापना यानी धाम की शुरुआत ही उससे हुई है। स्थाई भाव का मतलब क्या है, मूल मूल भावना, मूल चेतना जिस पर ये धाम का पूरा अस्तित्व आधारित है उसको स्थाई भाव कहते हैं, फाउंडेशनल मूड स्थाई भाव कहते हैं उसको। तो कथा आरंभ कृष्ण लीला से होती है दशम स्कंद में। वो क्या है कि भगवान वृंदावन छोड़कर गए, सब गोपियों को, ग्वाल बालों को सब छोड़कर गए। सब लोग सुन रहे हैं ना, लगे रहो और सुनो, भगवत कथा आरंभ हो रही है। भगवत कथा जहाँ होती है वहाँ पर सब नदियाँ, सब तीर्थ, सब धाम, सब संत, नारद मुनि, सारे संत, हनुमान जी, भगवान स्वयं, राम, कृष्ण सब प्रकट हो जाते हैं उसके अंदर। देखो आसपास में आपके मिलेंगे, आप शायद बीच में बैठे होंगे, ये सत बात है, विनोद नहीं कर रहा हूँ मैं। जहाँ कृष्ण की कथा होती है सारे संत, सारे नदियाँ, सारे तीर्थ, सारे कुंड, सारे सरोवर, सारे संत लोग और सारे धाम जो उधर नहीं है बाहर के सब प्रकट हो जाते हैं। एक साथ में आप सारे तीर्थों में स्नान कर सकते हैं जब आप कथा में बैठते हो। भगवान अभी कंस के निमंत्रण पर अक्रूर जी के साथ वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए। मथुरा में उन्होंने कंस का वध किया, बहुत सारी चीजें हुई। कंस का वध करने पर क्या हुआ, कंस की दो पत्नियां थी, क्या नाम था उनका, यस, दो लड़कियां थी जो कंस के साथ विवाह किया गया, उसका नाम क्या था, अस्थि और प्राप्ति। तो कंस मरने के बाद क्या हो गया, वो विधवा हो गई। तो बड़ी रोते 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 उसके पिता के पास गई, उनके पिता का नाम क्या था, जरासंध, बहुत भयंकर बलशाली था वो, एक होशियार भी था बहुत। दो लड़कियों को देखकर कंस का जमाई बनाया अपने को, कंस को अपना जमाई बनाया और अलायंस बनाया। तो फिर रोते रोते गई, अभी समझो किसी पिता के घर में विधवा लड़कियां रोते रोते आएगी कंप्लेन करते हुए तो पिता का आनंद होगा क्या, तो क्रोध आया उनको, क्या हुआ, बोले कृष्ण ने हमारे पति को मार डाला। उसको बहुत क्रोध आया, प्रतिशोध की भावना निर्माण हुई। तो उसने क्या किया, 24 अक्षौहिणी सैन्य को इकट्ठा किया और मथुरा में आक्रमण किया। मथुरा का युद्ध भूमि है क्या, मथुरा तो शहर है, युद्ध हमेशा युद्ध भूमि में होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध कहा घर पे हुआ था, नहीं, कुरुक्षेत्र पूरा रणांगण है वो, उधर हुआ था, लेकिन ये तो शहर में घुस गया। और जैसे आपके घर के सामने गली में खिड़की के पीछे सब जगह युद्ध हो रहा है, वो भी घमासान युद्ध हो रहा है, तो कृष्ण ने परास्त कर दिया उसको। एक्चुअली बलराम ने भी उसको बहुत पीटा, और बलराम जी आखिर में उसको ऐसे मारने ही वाले थे, तो कृष्ण भगवान ने आके रोका, बोला इसको मत मारो। बोला क्यों? तो आक्रमण करने आया, आतंकवादी है, आतंकवादी का वध करना कोई अपराध नहीं। वो कहते हैं कि ये है ना मेरा एकदम हार्ड कोर एनिमी है, ऐसा दिल से मेरा शत्रु है ये, और हम लोग क्यों आए हैं बताओ, हम लोग उन्होंने क्यों अवतार लिए? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये राक्षसों का वध करने के लिए भी हम लोग आए हैं, और अभी दुनिया भर में घूम घूम के ढूंढ ढूंढ के मारने के बदले में ये व्यक्ति ऐसा बेस्ट आदमी है ना, इसको छोड़ दो आप, वो सबको इकट्ठा करके सामने लेके आएगा। समझ में आपको है? क्योंकि वो देखो युद्ध में आपका वध नहीं होगा, युद्ध में वध होना भी एक गर्व की बात है, युद्ध में गर्व, अगर क्षत्रिय में वध होता है ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो एक गौरव का है। युद्ध में अगर मरते हैं कोई, और युद्ध में कोई मार सकता है आपको और बोलता है जा बेटे जा मैं तेरे माफ़ करता हूँ चले जा यहाँ से, तो अपमान है बड़ा, वो मृत्यु से भी बढ़कर है। वो कहेगा बाण मार के मेरा वध कर दे, मेरा अपमान मत करो। क्षत्रियों के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक बढ़कर होता है। और कृष्ण भगवान बलराम को क्या बोल रहे हैं? इसको मारो मत, छोड़ दो उसको। तो बहुत अपमानित होकर गया और फिर 24 अक्षौहिणी सैनों को लेके आया। ये अक्षौहिणी क्या होता है? कई करोड़ होते हैं उसके अंदर, कई करोड़। कुछ उसमें घुड़सवार होते हैं, कुछ पैदल होते हैं, कुछ हाथी सवार होते हैं, कुछ रथी होते हैं, कुछ अर्धरथी, कुछ महारथी, ऐसे बहुत एक कॉम्बिनेशन है पूरा। उसका महाभारत में पूरा गणित दिया है, वो पूरा मिलकर एक अक्षौहिणी बनता है। और ये कितना लेके आता था? 24 अक्षौहिणी। बोलो महाभारत में कितने सैन्य थे टोटल? पक्का बोलिए, 11, 18, 7, 12, एग्जैक्टली कितना था? 18 अक्षौहिणी, वो भी दोनों पार्टी का मिलके। और ये अकेला 24 अक्षौहिणी लेके आ रहे हैं, 1.5 times, नहीं मे बी वट एवर 25% मोर है ना। कितनी बार आया होगा वो? 16 बार आया या 17 बार, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, 17 बार आया ना। 17 बार हार गया कि जीत गया? तो वो मैं देखता हूँ बस एक बार। 16 बार यानी बहुत बड़ा नंबर है वो। हर बार सब मर जाते थे और इसको छोड़ देते थे। तो वो ना लास्ट 17th time जब निकल रहा है वहां से, तो उसको संतों को कंसल्ट किया, ब्राह्मणों को, कि ऐसे कैसे हो रहा है, हर बार मैं जाता हूँ हार के आता हूँ। संतों ने बोला आपने ब्राह्मणों का आशीर्वाद कहाँ लिया, अब ऐसे जाते हो, कितना गर्व है आपको, तो आपको याद ही रहता नहीं कि संतों के आशीर्वाद के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता है। अच्छा देखो राक्षस प्रवृत्ति कैसी होती है, ध्यान से सुनना। अभी आपको एडवाइस अच्छा मिला है, लेकिन राक्षस उसको कैसे अप्लाई करता है देखो। तो क्या क्या सभी ब्राह्मणों को ऐसा ना पकड़ पकड़ के अरेस्ट करके वो लाल दिया अपने कैद खाने में, बोले मेवा मेवा सब लेके आओ, पंच पकवान लेके आओ, उनको खिलाओ, आदेश दिया आप सब लोगों को खाना है, समझा आपको पेट भर के खाना है और मुझे आशीर्वाद देना है। क्या ये भी आशीर्वाद मांगने का तरीका है कोई? आप उनको प्रणाम करेंगे, चरण धोएंगे, उनको चरण अपने हाथों से पोछेंगे, आसन देंगे, माला पहनाएंगे, आरती पूजन करेंगे, संतों का स्वागत कैसे करना होता है? बोले महाराज जी प्रसाद लीजिए और थोड़ा सा मिठाई लीजिए और थोड़ा सा ये लीजिए, ऐसा प्रेम से उनको जिमाएंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, फिर दक्षिणा देंगे उनको, फिर वो दिल से आशीर्वाद देंगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हृदय से आशीर्वाद देंगे। ये अपने राक्षस स्टाइल में सब लोगों को पकड़ा और अरेस्ट किया, रसोइयों को आदेश दिया, सेनापति को बोला इनको सबको खिलाओ, नहीं खाएंगे जबरदस्त से खिलाओ, संतुष्ट करना है इनको, इनको आशीर्वाद जबरदस्त से देना है। तो संत लोग बेचारे भगवान को पुकारने लगे, बोले भगवान कैसे भी करो हमको बचा लो, क्योंकि उसने कहा अगर मैं इस बार आपको खिलाने के बाद भी हार के आया आप सबका वध कर दूंगा। कैसा आदमी है, राक्षस लोग ऐसे ही होते हैं, उनको समझता ही नहीं कुछ, जो बताने के बाद भी समझ में नहीं आता, क्योंकि दिमाग ही ऐसा है ना, राक्षस कृत्य करने से दिमाग बहुत मोटा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, सार असार बुद्धि चाहिए, सद असद विवेक बुद्धि चाहिए। तो राक्षस लोग वो ब्राह्मण लोग प्रार्थना कर रहे हैं बचाओ भगवान बचाओ, भगवान कौन है? भक्त वत्सल, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उनको पता है इनकी समस्या क्या है, और भगवान और क्या है, ब्राह्मण्य देव है भगवान। नमो ब्राह्मण्य देवाय, लोग बोलते हैं ना, गो ब्राह्मण्य हिताय च, उनका नाम ही ब्राह्मण्य देव है, वो ब्राह्मणों के देव है, बड़ा प्रेम करते हैं उनके ऊपर। तो भगवान ने सोचा अभी मैं अगर समझो इसको हरा दूंगा इस बार भी, तो बेचारे मेरे इतने सारे ब्राह्मण का वध हो जाएगा, तो वह नहीं होने दूंगा मैं। तो जब 17 टाइम आया ना, तो भगवान ने कहा देखो अभी 16 बार तो तेरे को हरा चुका हूँ मैं, इस बार तेरे को एक चांस देता हूँ कि मैं भागूंगा और आप मुझे पकड़ना, पकड़ा पकड़ी खेलेंगे, और आप मुझे पकड़ेंगे तो आप विजयी घोषित किए जाएंगे, खाली मुझे पकड़ो खाली। बोलो वाओ इतना आसान है, ऊपर से क्या मन में लग रहा है, ब्राह्मणों को आशीर्वाद मिला तो मैं बहुत बलवान हो गया हूँ, डर गया मुझसे। देखो सोचते कैसे राक्षस लोग, भगवान भागने लगे। तो ये एक कहानी है, इसके साथ साथ और एक कहानी भी हो रही है, क्योंकि 17वीं बार जब वो लौट के आया ना राक्षस, तो उसके खबर मिली ना कि आ रहा है आ रहा है, गुप्तहर होते ना गुप्तहर, वो तो पता करते, तो पता चला आ रहे हैं, तो सभी लोग नागरिक लोग भगवान के पास आए, भगवान अभी आप हमको कितना तड़पाएंगे, कितना आतंक से पीड़ित करेंगे, इसका इलाज क्यों नहीं करते आप, हम अभी तंग हो गए, हमारे दरवाजे में खिड़की में सब जगह पीछे युद्ध हो रहा है हमारा, आप घर में क्या हम लोग आसाम से जलेबी खा सकते हैं क्या बैठ के, बाहर युद्ध हो रहा है, खून खराब हो रहा है, हाथ पैर टूट रहे हैं किसी के, गर्जनाएँ हो रही है, और घर में पंच पकवान खा सकते हैं आप, सर धड़धड़ धड़धड़ होगा आपका, कोई अन्न आपको मीठा लगेगा नहीं, कितना दिन सहन करने का, ये लगातार युद्ध चल रहा है हमारे खिड़की के बाहर। तो भगवान ने बोला बस हो गया, अभी मथुरा वासियों को बहुत कष्ट दिया, उन्होंने विश्वकर्मा को फोन किया, बड़े तुरंत आ जाओ, समुद्र को पीछे करो और जमीन बनाओ, समुद्र को पीछे करके और वो जमीन में द्वारका नगरी बनाओ, और सब डिस्क्रिप्शन दिया कि एक गुलाबी महल होना चाहिए, एक पीला महल होना चाहिए, एक कमल के आकार में होना चाहिए, चंपा के आकार में होना चाहिए, एक इस खुशबू वाला होना चाहिए, इसे पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जो आपके आज के आर्किटेक्ट कभी भी प्लानिंग नहीं कर सकते। वो मैं बोलूँगा अगर ये महल बना उस पर चंपा की खुशबू आनी चाहिए, कैसे करेगा वो, बोला सीमेंट की खुशबू आएगी। लेकिन विश्वकर्मा है वो, बताने वाला भगवान, करने वाला विश्वकर्मा। सबसे अद्भुत बात वो नहीं है, अद्भुत बात ये है कि उस रात को, उस दिन में कंप्लेंट हुई, उस रात को सभी मथुरावासी अपने घर में सोए और उठे अपने नए घर में द्वारका में, सामान शिफ्टिंग के साथ, ऐसा नहीं कि खुद ही शिफ्ट किया सामान वहाँ रह गया फिर वापस आदमी भेजे, नहीं, ये है भगवान के भक्तों ने कहा ओवरनाइट। कितना अभी आप समझो पंडरपुर आना है, आप एक रात में घर पे सोए, नेक्स्ट डे उठे तो पंडरपुर में उठे, कितना अच्छा रहेगा, ना थकान ना कुछ कुछ नहीं, एकदम बढ़िया एकदम। वो अगली रात सोएंगे पंडरपुर में सोएंगे तो मुंबई में उठेंगे, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन भगवान के धाम में ऐसा होता है। इसलिए भगवान के भक्त बनो, भगवान के धाम में रहो, सब चमत्कारिक काम होता है वहाँ। और फिर यह आया, फिर इसकी एक कहानी है, उसमें हम नहीं जाएंगे, उसमें फिर भगवान ने उसको बहुत भगाया। अभी आप सोच सकते हैं भगवान को कौन पकड़ सकता है, बताओ, मैया भी भाग रही है ना, लाला रुक जा लाला रुक जा, और सब देवता भी देख रहे हैं, अरे परब्रह्म भाग रहे और मैया भाग रही उसके पीछे। लेकिन कब पकड़े गए वो, कब पकड़े गए, जब कृष्ण की इच्छा हुई तब पकड़े गए वो, मैया की इच्छा से नहीं पकड़े गए वो। कृष्ण ने सोचा बहुत हो गया अभी, मैया बहुत थक रही है, चलो पकड़े जाते हैं, तो फिर उसके पकड़ में आ गए। तो वो किसी के पकड़ में नहीं आते हैं, तो राक्षस के पकड़ में कैसे आएंगे, भक्तों के पकड़ में स्वेच्छा से जाते हैं। तो वो आए नहीं पकड़ में, और वो प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। तो इसने क्या सोचा, इतना डर गया है मेरा शत्रु, मेरा इतना डर गया है, दो दो शत्रु डर गए, अब चलो पर्वत को आग लगा देते, तो चारों तरफ से पर्वत को आग लगा दी, और बड़ी खुशी से घर चला गया, ब्राह्मणों को भर भर के दान दे दिया, मतलब तुम्हारा आशीर्वाद लिया इसलिए जीवित विजयी हो गया मैं, पहले लेता तो कितना अच्छा था, इतने मेरे फ्रेंड लोग बच जाते। इसके साथ साथ उस समय एक और राक्षस आया। अब भगवान ने क्या किया, जब वो पर्वत को आग लगा दिया ना, तो छोटी सी भगवान ने छलांग लगाई, और घर चले गए। वो उसको लगा कि दोनों मर गए और ये उल्टी तरफ से छलांग लगाए, आराम से घर चले गए। भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? एक पर्वत क्या होता है छलांग लगाने के लिए? कुछ भी नहीं होता। उसी समय काल यावन नाम के राक्षस का भी आक्रमण हुआ, उसकी भी खबर आई और वो ढूंढा ढूंढा गया, मथुरा में नहीं मिला कोई, तो वो लोग कुछ नहीं मिला, समुद्र में छुप गया वो। देखो, समुद्र में जमीन को प्राप्त करके, समुद्र को पीछे करके एक सुंदर नगरी बनाई, लेकिन राक्षस लोग क्या कह रहे हैं, हमसे घबरा कर समुद्र में छुप गया जाके। तो वही चीज़ है वो, हम लोग कह रहे हैं भगवान ने तो एक रात में पूरा महल बना दिया उधर, पूरा राज्य बना दिया, और राक्षस लोग कह रहे हैं कि छुप कर भागा। कोई बात नहीं, उधर तक गेट तक पहुंच गया, सारी नगरी नगरवासी सब सुरक्षित है, और उसके गेट के बाहर भगवान आए, बलराम जी भी आए, दोनों ही आए, कोई सैन्य लेकर नहीं आए। और काल यावन ने सावधान करके आह्वान दिया, तो भगवान उनके सामने जा रहे हैं, रथ में बैठ के सामने जा रहे हैं। तो उम्मीद क्या है कि ऐसे सामने आएंगे तो ऐसे बाण मार के युद्ध शुरू होगा। तो भगवान सामने आए और सीधे चले गए, जैसे मैं ऐसा आया और ऐसा चला गया पीछे से, आपको लगता है कि मैं युद्ध करूंगा, आप भी युद्ध करेंगे, चले गए। तो उसको लगा ये तो शत्रु पहले से डरा हुआ है, तो उसने रथ यूटर्न किया और उसके पीछे जाने लगे। तो भगवान अपना रथ बहुत जोर से भगाने लगे, उसको लगा शत्रु वास्तव में डर गए हैं, जब मैं मेरा स्पीड बढ़ाता तो ये और स्पीड से भागते हैं, यानी कि बहुत गर्भगणित हो गया है मेरा शत्रु। तो क्या आता ना, वो योद्धा को बहुत त्वेष आता है उससे कि अपना जो शत्रु है वो अभी हर डर चुका है, तो मारने में बहुत आसान है। तो बहुत जोर से शरियत हो गई उनकी, क्या कहते हैं उसको हिंदी में शरियत को, हाँ शरियत, रेस रेस इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो ना भगवान ने, दयालु है भगवान, अरे हम और आप उनको भूल सकते हैं, अगर आपने उनको एक बार बताया ना कि मैं आपका हूँ, तव अस्मिति, स्वयं भगवान रामचंद्र के रूप में उन्होंने एक घोषणा कर दी है। सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग के हित की बात है, सबके स्वार्थ की बात है। क्या उन्होंने घोषणा की थी, एक बार अगर मेरे सामने कोई आकर कहता है कि मैं आपका हूँ, आई एम योअर्स, तव अस्मिति, तव अस्म इति, मैं आपका हूँ, तो मैं जीवन भर अनंत काल तक, चिरंतन शाश्वत काल तक उस वाक्य को नहीं भूलता जो एक भक्त ने मेरे सामने आकर कर कह दिया है। हो सकता है वो भक्त भूल जाएगा किसी समय के प्रभाव से और कुछ अलग कार्य करने लगेगा, लेकिन मैं उसका वो वाक्य नहीं भूलूंगा जो हृदय से उसने एक बार कहा है मेरे सामने। तो आपको यहाँ रह के एक बार हृदय से बोलना है विट्ठल जी हम आपके, तो विट्ठल भी कहेंगे मैं भी आपका हूँ और आप भी मेरे हैं। हम क्या कहते हैं, अपना र बोली, वो भजन में कहते ना, आप अपना बना लो, मुझे अपना कहो भगवान, भगवान ने वादा किया है। तो वैसे एक भक्त है, उसका नाम क्या है, मुचुकुंद। वो मुचुकुंद जो है ना, वो पृथ्वी का राजा है, लेकिन देवता और असुर के संग्राम में उसने सेनापति बनकर बहुत पराक्रम किया, देवताओं की सहायता में। सब लोग सुन रहे हैं ना, अभी मुचुकुंद आया है सीन में, प्रवेश कर रहा है अभी मुचुकुंद। तो उसने सेनापति के रूप में बहुत भयंकर पराक्रम किया और इतना साल युद्ध किया ना, इतना साल हृदय से युद्ध किया भगवान के भक्तों के पक्ष में, असुरों के विरुद्ध, और आखिर में देवों का विजय हो गया। तो इंद्रादि देव जो थे वो बड़े प्रसन्न हो गए, तुम्हारे पराक्रम से हमारी विजय हुई। तो देवता लोग क्या करते हैं प्रसन्न होने के बाद, आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, बोलो वरदान मांगो। ये बेचारा व्यक्ति है ना, युद्ध करके इतना थका हुआ था, मुझे आप बहुत प्यासे हो, बोले पहले कुछ बोलो, पहले पानी दो, भूखे हो, बोले 7 दिन से खाया नहीं, पर खाना दो, बाद में सब पूछो, क्या कपड़ा पटा क्यों है, बैग किधर गया तुम्हारा, बाद में पूछो। वैसे ये व्यक्ति इतना थका हुआ था, प्रचंड थका हुआ था, बोलते मुझे वरदान दो सोने का। ऐसा कोई वरदान मांगेगा क्या आपको, भगवान सामने खड़े हो जाएंगे, देवता कोई खड़ा हो जाएगा, अब बोले मुझे सोना है, अच्छा बिस्तर बना दो, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं, आशा विचार कर सकते हैं, कितना थका होगा वो सेवा करके। तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में कि किसी व्यक्ति को इतना भी थकना नहीं चाहिए, थोड़ा बीच में प्लान करके विश्राम भी लेना चाहिए, क्योंकि अभी वरदान की मांग हो रही है, वरदान मांगो और आप कह रहे सोना है क्योंकि इतने थके हो, देखो आगे क्या हुआ इसके वजह से, बहुत थकने के बाद में क्या हुआ आगे सुनो प्रेम से। तो देवता कैसे, अभी तुम्हारी इच्छा है वो पूरी करेंगे। ऊपर से वो एक क्लॉज है, क्लॉज हाँ, कि मुझे ऐसा सोना है कि कोई आके मुझे उठाएगा ना तो मैं आँख खोल के देखूंगा उसको तो वो जल के भस्म होना चाहिए। बाप रे कितना नींद आएगा उसको, सोचो आप। जैसे मैं सोता हूँ तो बोलता हूँ डोर बेल बंद करो, मिडिल दरवाज़ा बंद करो, धीरे से बात करो, किचन में बर्तन की आवाज़ मत करो, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देके मैं सोता हूँ कि मेरी नींद बहुत लाइट है, मुझे खट हो गया तो भी टूट जाता है, फिर वो बहुत सर दर्द होता है, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं सोने के पहले ही सब ये इंस्ट्रक्शंस अरेंजमेंट करके खुद बेल बंद करके जाता हूँ, क्योंकि तो सोना है मुझे अभी, बहुत क्रुशल है, आज सोऊंगा नहीं तो शाम को यज्ञ करना है, कल सवेरे प्रवचन करना है, ट्रैवलिंग करना है, नहीं जमेगा, तो बहुत सोचना पड़ता है उसके लिए। तो उसने क्या कंडीशन रखा, कोई मुझे उठाने को आया ना तो उसको मैं देखूंगा तो मेरी आंखों से अग्नि निकल कर वो भस्म होना चाहिए। तो देवता ने वो भी बोला तथास्तु, अभी क्या करेंगे, अभी ऐसा वरदान मांग रहे तो उसको अपने बुलाए वरदान मांगो। तो उसको एक अच्छा गुफा दे दिया, मतलब यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ जाके सो जाओ। द्वारका के पास में अभी भी वो गुफा है, मुचकुंद की गुफा, हम लोगों ने यात्रा की यहाँ पर, अभी सो गए वो। कभी की बात है ये, सत्ययुग की बात है। सत्ययुग के कितने साल होते हैं पता है किसी को? 17,96,000 साल होते हैं, नहीं 17,28,000 साल होते हैं। अपने 16 माला के जप में कितने मंत्र होते हैं? 1728 को याद रखना, 1728 उसमें हजार लगा दो, 30 लगा दो तो वो सत्ययुग का काल हो गया। द्वापर में कितना काल होता है? 12,96,000, 1296 30 लगा दो। और द्वापर का कितना काल होता है? 8,64,000। और कलयुग का कितना काल होता है? 432,000। आप बोलेंगे आपको सब याद कैसे रहता है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है उसका, कलयुग का याद रखो 432, उसको दुगना करो द्वापर, तिगना करो त्रेता, चौगुना करो सत्य, सिंपल। कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, ओके, कॉमन सेंस। तो सत्ययुग बीत गया, कितने साल का अभी बोला था, अभी बोला था, ये कलयुग की मेमोरी है दोनों। आप जब तक ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक सब कुछ नहीं पकड़ेंगे, सब ऐसा बहते जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा। कितना हो गया कलयुग का? 1728,000। फिर त्रेता राम भगवान का युग समाप्त हो गया। कितने साल गए? 1296,000। और द्वापर के अंत में भगवान आए, कितने साल हो गए? 864,000 में के एंड के 125,000 उसमें कृष्ण आए हैं। अभी आप गिनती करो, 18,00,000 तो उधर गए, फिर से 13,00,000 तो उसके बाद में गए, 31,00,000 हो गए, और उसमें 864,000, 8,00,000 समझो, 8.5 समझो, कितने हो गए? कम से कम 38,00,000 हो गए साल, चिल्लर साल भूल जाओ। इतने साल वो क्या हो रहा है, वो सोया हुआ है उधर, वो सबको मालूम है लेकिन किसकी हिम्मत हो रही है कि जाने की वहाँ पर, किसको मरना है? अरे कल्याण करेंगे तो करेंगे, लेकिन खुद मर के थोड़ी कल्याण करेंगे किसका। और भगवान को भी याद है, वो भगवान है ना। देखो मैं भी ये क्यों बताया आपको, इतना थका आदमी जब सोने का वरदान मांगता है, कितने साल वेस्ट हो गए उसके, आप सोचो 38,00,000 साल के अभी सोया हुआ है, बीच में सपना आके उड़ गया होता तो बोलता मैं ऐसा वरदान क्यों मांगा, सोचता होगा वो, इतना साल सोया हुआ, ना खाना ना पीना ना कुछ, ना कोई लीला, ना कोई परिवार, ना कोई प्रेम, कुछ भी नहीं उसके अंदर, उल्टे ऐसा सोया है ना तो नाखून जो है ना ऐसे बढ़ के ऐसे 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 हाथ के नाखून है उसके आगे ही नाखून ऐसे बड़े हुए, बाल जो है वो ऐसे बड़े हुए कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तमोगुण में भगवान को उसकी याद थी, और भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं। भगवान ने क्या चमत्कार किया? खुद को डरपोक कहलाना पसंद किया, स्वीकार किया, क्योंकि वो कालयावन से भी भाग रहे हैं, जरासंध से भी भाग गए, किस लिए भाग गए? भक्तों के लिए, भक्तों का उद्धार हो जाए, ब्राह्मणों का वधन हो जाए, इसलिए खुद रणछोड़दास कहलाए, रण से भागने वाले। एक क्षत्रिय के लिए रण से भागना बहुत अपमानजनक बात होती है, वो कहते हैं शत्रु को मारो मुझे आप, बाण मार के खत्म कर दो। भागने लगे, ये भी बोला चलो शत्रु के बराबर करना चाहिए, भी कूद गया और भागने लगा और दोनों पैदल भाग रहे। भगवान पहाड़ में घुसे, वो भी पहाड़ में चढ़ रहा है, घुस रहा है, उसको बहुत त्वेष आया कि रे मार दूंगा उसको मैं, वही मेरा शत्रु जो है भेष बदल कर अपना वस्त्र ओढ़ कर सो रहा है, नाटक कर रहा है, और अंदर गुफा में जाके छुप गए। कितने लोगों ने कथा सुनी है, डरपोक सोने का नाटक कर रहा है, लेकिन मैं नहीं भूलता, आज तुम्हारा मेरे हाथ से वध निकालता हूँ तुझे, पोक कहीं का। आंखें खोली, आंख में से प्रचंड अग्नि आई और एक क्षण के अंदर जल के भस्मसात हो गया, खाक हो गया, दर्शन दिया भगवान ने। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का दर्शन देख के वो मुझा सुगंधित प्रकाशमान पूरी गुफा में प्रकाश हो गया, उसका दर्शन मुचकुंद ने किया, सब उसको याद आया, अरे मैं कब से सोया हूँ, वरदा श्रम तो किया ही नहीं उन्होंने, अरे भागे पूरा रनिंग एक्सरसाइज हो गया, वो युद्ध करने का श्रम नहीं किया। और देखो कभी कभी ना हर समय ना बल का दूसरा तो वैसा उनके मुख सामने ऐसे 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 करने लगता है, मतलब चैलेंज कर रहा है, तो मुस्लिम कहते हैं कि बोट में जगह बहुत कम है लड़ने की, बोट देते हैं उसके अभी जाओ टू फाइट ना एवरी टाइम एवरी टाइम हाउ टू फाइट, तो ये करने लगता है, बोले जाओ तो वो बोट में उसको मुक्का मारने के, उस तरह से जिसको ट्रिक से मार सकते हैं उसको बल का प्रयोग क्यों करना चाहिए, वाई टू वेस्ट कैलोरीज एंड ज्वेल्स ऑफ एनर्जी। तब पता चलता है कौन है ये, जब तक बंद है तब तक पता नहीं क्या है उसका व्यक्तित्व। क्या कहता है भगवान, आप इतने दूर मेरे मुझे उद्धार करने के लिए कि मेरा एक भक्त वहाँ सोया उसका उद्धार करना है, कब तक सोता रहेगा, एक भगवान ही सोच सकते हैं सब, और बाकी लोग सोचेंगे भी तो कर क्या सकते हैं, दुनिया के लोगों पर इतना भरोसा मत करो आप, वेस्ट ऑफ टाइम है वो, प्रेम जरूर करो रिश्ता रखो लेकिन भरोसा केवल एक था, जिस जिस का हमने वो सब डूबते रहे भंवर में, तो जो खुद भंवर में डूबने वाला है वो आपको डूबने से कैसे बचाएगा, चाहते हुए भी नहीं बचा पाएगा, प्रेम होगा उसका और चाहेगा भी कि इसको बचाऊं, लेकिन जो खुद डूबता ब्रह्मांडों में अनंत सृष्टि में सृजन में आध्यात्मिक भौतिक इसमें एक ही व्यक्ति है जो भरोसे के योग्य है, सहारा चले जाएंगे हम, कोई नहीं बचा पाएगा, एक ही है कृष्ण भगवान का नाम क्या है, मुकुंद, जो मोक्ष देने वाले उसी को मुकुंद कहते हैं। उस भूल गए होंगे लेकिन आपने वो माँ के कहने पर फूल चढ़ाया, भगवान नहीं भूल सकते उसको, कुछ भी तुच्छ सेवा आपने की होगी ठाकुर कभी नहीं भूलते उसको। अब ये बात बराबर ध्यान से सुनो तो आपको पता चलेगा पंडरपुर का कनेक्शन क्या है इसके अंदर। अकेले मैं देख रहा हूँ कि आपका करुणा स्वरूप, भक्त जो है ना उसको सब कुछ प्राप्ति होने पर भी वो निस्वार्थ होता है, वो दुनिया की ही सोचता है कि इसका लाभ दुनिया को कैसे मिले। वो नारद मुनि देख रहे हैं कि याद है कि विश्व का कल्याण करना है, बोलते भगवान आप वरदान दे दो मुझे किसी रूप में आप पृथ्वी पे आओगे, और वो जगन्नाथ बलदेव रूप के आ गए उसके अंदर। क्या बात, कितने बजे सवार तो टाइम है अपने पास। तो अभी द्वापर युग में हो हुआ, मुचकुंद गए, कितने साल हो गए, 300-400 साल की बात है, मतलब अभी अभी की बात है। वो क्या उनका पिताजी का नाम था भूल गया कहते हैं, और भगवान का नाम क्या रखते हैं, पुंडरीकाक्ष, जिनके अक्ष यानी नेत्र पुंडरीक के समान है, कमल नयन उसको, उसका नाम है पुंडरीक, व्यवहार करता था। फिर बड़ा हो गया फिर भी उसका व्यवहार बदला नहीं, छोटेपन में अलग कुकर्म करता था, बड़े होने पर सोच समझ के करने लगा। फिर उसका विवाह हुआ कि पति को इस पर प्रेम है तो वो उसको प्रेम करती है, पति का दुश्मन है तो उस पर दुश्मनी अपने आप ही कर लेती, कोई कारण नहीं। तो ना एक दिन माता पिता बहुत जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं पता जाओ चले गेट आउट, तो वो काशी के मार्ग पर यात्रा शुरू करते हैं करना अपना। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कहानी, जैसे हम लोग कैसे ट्रेन गाड़ी हवाई जहाज तो घोड़ागाड़ी करते हैं, तो घोड़ागाड़ी में बैठ के काशी जा रहे हैं पति पत्नी, और माता पिता भी पैदल जा रहे हैं। रास्ते में माता पिता को चलते हुए बड़े मातृ पितृ भक्त हैं वो स्वयं, और भगवान के भी बड़े भक्त हैं, वहाँ पर निवास करते हैं। रात में बीच में चौरंत पुंडलिक जग जाता है किसी कारण, तो देखता है किसी, और जब ही वो साफ सफाई करती रहती है आगे आगे बढ़ती है तो स्वच्छता के कारण उनका तेज बढ़ते जाता है, मानो वही स्वच्छ हो रही है। तो जिनका प्रकट है, हम नदी के रूप में सेवा देते हैं, लोग आकर स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ते हैं, हम निस्तेज हो जाते हैं और फिर हम कुकुटमुनि के आश्रम में आते हैं और इनकी साथ में साधु को देखा और उनको कुछ पूछना चाहता था तो उसने मुझे धुतकार दिया, बात ही नहीं किया मुझसे एकदम सा। बड़े तो मातृ पितृ, ये काशी की महिमा क्या है, ऐसे वो मुनि को पूछ रहे हैं। मुनि को वो त्रिकालदर्शी, उनको पता है तो बड़ा अपराधी आदमी है, वो कहते हैं मुझे आपको काशी की महिमा है, वो त्रिकालदर्शी भी है, वो सब जानते हैं, आपको देखकर सब समझ गए, अभी तो सुधर जाओ कम से कम। तो उसको बड़ा पश्चाताप होता उस समय, चमक गया वो चारों तरफ से, पश्चाताप हो गया। पत्नी को बोला नहीं अभी माता पिता को ढूंढते हैं, अपना घोड़ा गाड़ी उल्टा लेके जाते हैं और रस्ते में मिलेंगे कहीं ना कहीं, आपको कष्ट दिए, हमें आपकी सेवा करना चाहते हैं। माता पिता को आनंद हो गया, घर पे चले गए। फिर पुंडलिक ने दिन रात माता पिता की सेवा करना आरम्भ किया, माता पिता की सेवा किया इसलिए विट्ठल का दर्शन हुआ। अरे क्यों हुआ, तो माता पिता नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले, व्यभिचारी, मांसाहारी होंगे, उसकी सेवा करेंगे तो विट्ठल जी थे, कई वर्णन दिए, पैर मालिश करते थे, उनको नहलाते थे, उनको पैर दबाते थे, उनको भोजन खिलाते थे, उनको क्या चाहिए वो करते थे, उनको की लहरों का अनुभव हुआ कि उसको छोड़कर अभी कुछ नहीं करते थे, वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा। और इधर क्या हुआ, भगवान एक बार द्वारका गए, वो तो भगवान रुक्मिणी के महल में थे, रुक्मिणी कहीं बाहर गई थी, तब राधा रानी गोपियाँ आई तो भगवान ने राधा रानी को रुक्मिणी के चली गई, सीधे इधर आ गई, कहाँ गई, पंडरपुर, उसका नाम है दिंडी रव वन। उसकी कुछ देर बाद सब संवाद समाप्त हो गया तो भगवान भी व्याकुल हो गए, अरे रुक्मिणी तो भाग के चले गई, क्रोधित हो गई, मुझे मनाना पड़ेगा, वो भी रथ लेके आ गए और देखा दिंडी रव वन में तपस्या कर रही, पर उसका घर था पहले भी, पिता माता भी यही रहते थे, तो सीधे पुंडरीक के घर पे आ गए। अभी ये रात का समय था तो उतने में ना वो ऐसे बैठा है ना, यहाँ माता जी का सर है, पिताजी का सर है, पीछे से ऐसा उसके घर पे बहुत प्रकाश दिख, मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। तो पुंडलिक कहते हैं अभी मैं सेवा में हूँ, सेवा समाप्त होने पर आपको मिलूँगा। बोले इस पे खड़े रहो आप, जैसे भी सेवा समाप्त होगी मैं आपको मिलूँगा। और भगवान खड़े हो गए, देखो कैसे भगवान है, ऐसे नहीं कि आप मुझे ऑफिस में मेरे आए, मैं आपके घर आया हूँ और कह रहा हूँ मैं आया हूँ, और आप कहेंगे समय नहीं है मेरे पास, आप कहेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच, चले जाएंगे, भगवान खड़े रहे वहाँ। बहुत ऋणी है, ऋणी भाव के भगवान, हम ज़्यादा ऋणी नहीं होते, भगवान कभी भी ऋणी भाव भगवान से अधिक कोई नहीं कर सकता है, भगवान सदैव भक्तों के ऋणी रहते हैं, केवल उनको अपना नहीं बनाते हैं, वो भी उनके बन जाते हैं, उनके इशारों पर नाचते हैं, उनके नियंत्रण में चले जाते हैं। भला यू चैतन्य महाप्रभु ने कितनी बार कहा, हृदय से बोलते, क्योंकि हृदय से वो अपने भक्त को अपने आप को अर्पण कर देते हैं। तो भगवान खड़े हैं कमर पे हाथ रखे, तो बहुत देर बाद वो निद्रस्त हो जाए, द्रुत नहीं कर सकता है, इतना सुंदर प्रेम का संवाद है। पुंडलिक ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है, उनके रूप का भी वर्णन दिया है कि भगवान ने क्या क्या पहना था, किट बन जाओ, तो बताऊंगा बाद में कहानी उसकी, वो उपाख्यान है, वो साइड स्टोरी है। तो इंद्र को किट बनाया गया तो इंद्र को फिर वरदान भी भगवान के रूप का वर्णन किया, और वो वहाँ पर भी वो पुंडलिक वही बात कर रहा है, इतनी रात गए आप मेरे कुटिया में आए हो, जैसे हम जो गंगोत्री में जाते हैं और गंगा जी का जल पीते हैं तुरंत एक बोतल में भर लेते हैं, क्यों बम्बई में जाके रुकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं उसी में आपका कल्याण भी निहित है, आपको अलग से अपने कल्याण के लिए। मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो टीसी मेरे पहचान के निकले और हमारा थोड़ा सा बैठ के सुबह सुबह बातचीत हो रही थी, जब भी हो गया था तो नहीं डायरी खोला, हाँ अभी मुझे वो दिन याद है, बहुत सुंदर डायरी खोला, खुला आपको मैं एक बात सुनाता हूँ, वो मुझे बोले टीसी बोलते हैं तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, इतना ही सुना है, इतना गहरा वाक्य है दो, ये दोहा इतना गहरा है कि अगर हम स्वार्थ में लिप्त हैं तो भगवान अपने धाम में मजा ले रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं आपका, जब आप उनका नाम अपना सर्वस्व बना लेते हैं, उनके भक्तों की सेवा, उनकी भक्ति अपना जीवन बना लेते हैं, तो आपका हर काम उनका उत्तरदायित्व है, आपका सारा काम वो संभाल लेते हैं। वो जो हमारे कर्दम मुनि है ना, उनको नौ कन्याएं हुई थी देवाहुति को, वो तो भजन में लगे थे, उनको बोला नौ कन्याओं, वो नौ कन्याओं का जन्म दिया और जाने लगे, तो देवाहुति कहती है अरे महाराज आपने हमारे संतान देने का तो वरदान किया पूरा, अभी नौ कन्याओं का विवाह कौन करेगा, तो उनका तो भजन में मन लगा हुआ है। आप क्या सोचते हो, वो पत्नी की इच्छा थी संतान चाहिए, हवा महल निर्माण किया, हवा महल मतलब क्या, आकाश में एक शहर निर्माण किया, पूरा नदी नाले उसके अंदर, पहाड़ फव्वारे, महल, दासियां, संगमरमर के फर्नीचर सब कुछ है उसके अंदर, वो हवा में है, ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, खुद की सृष्टि है। उसमें 100 साल तक अपने पत्नी को आनंद दिया उन्होंने गृहस्थी का, और उसमें 9 कन्याओं का जन्म दिया, और आसक्ति बिल्कुल भी नहीं महल में, तुरंत तप में जाने लगे जंगल में। तो पत्नी ने कहा महाराज पतिदेव स्वामी इनका विवाह भी करना है। उस समय ब्रह्मा जी 9 गिने चुने ऋषियों को लेकर वहाँ प्रकट हो गए, उसकी 9 कन्याओं के लिए एकदम परफेक्ट वर ढूंढ कर वो ले आए, और उनके सामने ब्रह्मा जी ने 9 कन्याओं का 9 ऋषियों से विवाह कर दिया। तो क्या है, जो उनके नाम में रथ है उनका काम सब भगवान संभालते हैं, ये इतना सॉलिड स्ट्रांग प्रूफ है इसका। तो उन्होंने कहा कि ये मैं भक्तों की करुणा का वर्णन कर रहा था, भक्त कैसे दूसरों का सोचते हैं। तो भगवान ने कहा, उन्होंने भगवान को कहा आप यहीं खड़े रहो, यहीं खड़े रहो, और दुनिया आपको देखने को आएगी तो वो समझेगी कि आप कितने दयालु हैं, मुझ जैसे पतित जीव को तारण करने के लिए अपना धाम छोड़कर मेरे कुटिया में आए हैं। वो जो आप दर्शन करने जाते हैं ना, वो पुंडलिक की कुटिया है, वो घर है पुंडलिक का, वो जहाँ पुंडलिक रहते थे उसी में वही खड़े हैं वो आज तक। हम लोग क्या सोचते हैं, युगे 28 से उठे बेटे मरी, वो हमको लगता है कि 28 युग वो बीट पर खड़े हैं। नो, 28वें युग में किसके, वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में वो प्रकट हुई, ऐसा उसका अर्थ है। हम लोग समझते हैं कि वो 28 युग से खड़े हैं, नहीं, और आज तक भी खड़े हैं। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं कि ये भगवान ऐसे विशिष्ट भगवान है, उनकी प्रतिष्ठापना नहीं हुई है, वो स्वयं आके खड़े हो गए। और अगर कोई सोचता है कि ये प्रतिष्ठापित भगवान है, इनका प्रतिष्ठापना हुआ है, वो नरक में जाएगा अगर ये सोचेगा, क्योंकि ये बहुत अनोखे भगवान है, ये स्वयं आके और स्वयं खड़े हो गए, कोई प्रतिष्ठापना नहीं उनकी हुई। क्या कह रहे हैं वो यहाँ खड़े होकर ऐसे, वो ये बता रहे हैं कि जो मेरा भक्तों की सेवा करता है, मेरा भक्त बनता है, जीवन को मेरी सेवा में अर्पण करता है, उसके लिए भवसागर इतना तक हो जाता है। जो भवसागर में हम डूब रहे हैं, पता नहीं कितनी गहराई है उसके अंदर, तैरना मुश्किल है, पार लगना मुश्किल है, वो भवसागर जो है मेरे भक्त के लिए यहाँ तक हो जाता है। इसमें आसानी से, बारिश में कैसा है, मुंबई में छतरी लेके चलते हैं ना हम लोग, इतना इतना पानी में चलते हैं आराम से। और आगे लिखा है भागवत में कि मेरे भक्त के लिए ये भवसागर जो है ना, वो वत्स पदम, एक गाय के बछड़े के पैर के जगह में जितना पानी रहता है ना, समझो बालू में गाय चल रही है तो हर एक पैर में एक एक गड्ढा बनेगा ना उनके पैर जैसा, और उसमें बाद में लहर आ गई तो पानी भर जाएगा, तो कितना सा होगा, वो एक बच्चा भी लांग सकता है उसको। तो इतना अथाह अपार सागर जो है जीवन मृत्यु का, वो इतना सा हो जाता है और एक बालक भी सहजता से उसको पार कर सकता है। मेरे भक्त के लिए भवसागर इतना सा हो जाता है, और यहाँ बता रहे हैं कि कमर तक हो जाएगा, चिंता मत करो आराम से पार कर सकते हो। तो ऐसे ही ये हमारी सुंदर ते ध्यान उभे बिटेवरी कर कटावरी ठेवनिया, इनका ध्यान करने से भी आप पवित्र हो जाएंगे। तो भगवान ने क्या दिखाया कि जो सेवा में रत है उसको मेरे पीछे भाग के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद आके दर्शन दूंगा उसको। पुंडलिक कहाँ गए थे क्या मंदिर में किधर, वो तो अपने माता पिता की सेवा में थे, वो सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए। आज सवेरे मैंने कहानी बताई कि गरुड़ देव को भगवान ने दर्शन क्यों दिया, क्योंकि तो उनकी माता जो उनकी भक्त थी विनता, उस माता के सेवा के लिए निरपेक्ष होकर उसने अमृत की प्राप्ति की और खुद अमृत नहीं पिया, प्राप्त होने पर भी मातृ सेवा में थे वो, इसलिए भगवान ने दर्शन दिया उनको इंद्र को मिलने के पहले। तो सेवा बहुत पावरफुल होती है, सेवा जो है ना वो भगवान को वश में कर लेती है, केवल प्राप्त नहीं कराती है वो। प्राप्त करना, दर्शन देना एक बात है, लेकिन वो भगवान आपके वश में हो जाना, भगवान दास बन जाते हैं भक्तों के, केवल वश में नहीं होते भगवान। देखो हमारी गोपियाँ थी ना, वो तालियां बजाती थी, उसका वो बिल्कुल ठाकुर जी ने कृष्ण करुणामृत में श्लोक लिखे हैं बहुत सारे कि कैसे गोपियाँ ताली बजा रही है और कैसे कन्हैया नाच रहे हैं, फिर हाथ आगे करते हैं तो उसको चुल्लू भर छाल देते हैं, इतना सा छाल, और वो चाटते हैं उसको और कहते और दो, तो गोपियाँ कहते हैं और नाचो, तो और तालियाँ बजाती हैं, फिर और नाचते हैं, ठमक ठमक के नाचते हैं, फिर हाथ आगे करते हैं, फिर एक चुल्लू पर छाल देते हैं, फिर पीते हैं, ऐसे नाचते रहते हैं। बोलो क्या जरूरत है भगवान को, अरे वो तो पूरे सृष्टि के मालिक है वो, उनके लिए दुनिया नाचती है, लेकिन भक्त के सामने वो भी सेवक बनकर नाचते हैं, उनको रिझाने के लिए आते हैं, उनका सेवक बनकर आते हैं, उनके बनकर आते हैं, ऐसे भक्तवत्सल भगवान हैं। तो पुंडरीक जी के लिए भी यहाँ पर भगवान ने यही दिखाया कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, अहम परभक्त पराधीनो, मद भूता पूजा व्याधिका, मैं मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मेरे भक्तों की सेवा करने से प्रसन्न हो जाता हूँ। आप सोच सकते हो कि मेरी सेवा कर करके मुझे प्रसन्न करोगे, कठिन बात है बहुत, लेकिन मेरे भक्त की सेवा करोगे तुरंत मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो हमें भी चतुर होना चाहिए, कठिन मार्ग को क्यों अपनाना है, उनको पूजन करो लेकिन उनके भक्तों की सेवा करो जब मौका मिलेगा ना। ये मत देखो ये जूनियर है सीनियर है, कल आया हुआ है, मैंने प्रचार करके उसको भक्त बनाया था तो उसको मेरी सेवा करनी चाहिए, ये सब बातें छोड़ देना। जो भगवान का नाम लेता है उसकी सेवा करना, चाहे आपके प्रचार से वो भगवान का नाम लेता होगा, लेकिन अभी वो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का भक्त हो गया है, तो जूनियर हो सीनियर हो इक्वल हो, सेवा करो उनकी। आप ये मत देखो कि मैं संत की ही सेवा करूँगा, जो दुनिया में सम्मान प्राप्त है महामंडलेश्वर है उनकी ही सेवा करूँगा। नो, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं व्याख्या की है, जो भगवान नाम का जप करता है वो मेरा भक्त है। वो 10 साल कर रहा है कि 5 साल कर रहा है, आपसे पहले से कर रहा है, ये नहीं बताया। जो भगवान का नाम हृदय से लेता है वो मेरा भक्त है, उसकी सेवा करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मत भूता पूजा व्याधिका, मत भक्ता पूजा व्याधिका। तो ये इस धाम का स्थायी भाव है, इसलिए मैंने आपको पहले ये कहानी बताई, ज़्यादा यहाँ वहाँ मत डलो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। और दूसरी बात समझना, मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात विशेष बताई थी, हमारा लक्ष्य वारकरी सेवा है। वारकरी का मतलब क्या है, जो आषाढ़ी की वारी करता है वो वारकरी है। तो आप भी वारकरी हो, आप भी आषाढ़ी में वारकरी पंढरपुर में आए कि नहीं, तो जो सेवा के लिए आए हैं वो भी वारकरी है, और जो चल के आ रहे हैं वो भी वारकरी है। तो आप इन लोगों का अपराध करके उनकी सेवा करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। बरसाने में महाराज वही कहते हैं, हम लोग वहाँ ब्रजवासियों की सेवा करने जाते हैं। ब्रजवासी कौन है, जो ब्रज में वास करता है, जो 15 दिन के लिए वहाँ पर रह रहा है वो भी ब्रजवासी है। जैसे आप लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, 15 दिन का ब्रजवास कर रहे हैं आप, तो आप भी ब्रजवासी है और वहाँ के नेटिव भी ब्रजवासी है, तो दोनों की सेवा करना है, किसी का अपराध नहीं करना है, किसी को ऊँचा नीचा नहीं मानना है। ये सब भाव की बातें हैं, इसको समझ में आपको आएगा ये भाव, तो आपका ये वारी धन्य है, भगवान आपको बार बार बुलाएं ऐसी वारी करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।